ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण तो बन गए, और फिर बात आती है इस ब्राह्मण जीवन में जल्दी से जल्दी हम स्व उन्नति को कैसे पाए। पहले था स्व उन्नति की सीढ़ी, अब तो सीढ़ी का जमाना गया, अब हम लिफ्ट में चढ़ना चाहते हैं। स्व उन्नति का बहुत सहज साधन, स्व उन्नति की लिफ्ट है स्व चिंतन। आइए इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय राजू भाई जी। हम सब आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आप बचपन से ही ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। 1972 में आपने अपने आप को ईश्वरी सेवा अर्थ मधुबन महायज्ञ में समर्पित किया। हम सब ब्राह्मणों की अति प्यारी मुरली, इसे कंपोज कर आप ही हमारे पास भेजते हैं। दादियों के क्लासेस, अव्यक्त इशारे, सेवा समाचार आदि पत्र पुष्प के द्वारा आपसे ही हमें प्राप्त होता है। कई पुस्तकों का आपने संकलन किया है। इसके अलावा पत्रों के उत्तर देना, हिंदी टाइपिंग, फोटोकॉपी तथा स्टेशनरी आदि डिपार्टमेंट्स की अनेक जिम्मेवारियां भी आप संभाल रहे हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इतनी सारी जिम्मेवारियां इनके बावजूद भी आपको हमने सदैव हर्षित एवं अति हल्के रूप में ही देखा है। तो आइए ऐसे विशेष हस्ती से हम क्लास सुनेंगे। स्व उन्नति की लिफ्ट स्व चिंतन, आदरणीय राजू।
ओम शांति। अभी हम सभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे। ब्रकुटी आसन पर आत्मा विराजमान है और सभी कर्मचारियों की दरबार लगाई है। ऐसे सुंदर गीत सुनते हर एक ने अपनी दरबार को देखा होगा। स्वचिंतन माना ही आत्मा अपने आप को, अपने कर्मचारियों को सदा आर्डर प्रमाण अपने अनुसार चलाए। अभी तक हम सभी सुनते आए स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। लेकिन कुछ दिन पूर्व बाबा की एक मुरली में बड़ा अच्छा शब्द पढ़ने को मिला कि स्वचिंतन ही स्व उन्नति की लिफ्ट है। तब से लेकर के विचार चलता रहा कि ऐसी कौन सी बात है स्वचिंतन में जो लिफ्ट का काम करती है। हम सभी जानते हैं जिन ब्राह्मण आत्माओं को स्वचिंतन का अभ्यास है उनकी स्वस्थिति बहुत अच्छे से अच्छी बन जाती है, और जिनकी स्वस्थिति अच्छी है वो बड़े से बड़ी परिस्थिति को सेकेंड में पार कर देते हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ने में थकावट होती, टाइम भी लगता, और लिफ्ट में जाते कुछ सेकेंड में कई मंजिल क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे ही स्व उन्नति करने के लिए स्वचिंतन, और स्वचिंतन का आधार बाबा की मुरली है। जिससे स्वचिंतन भी चलता है, शुभ चिंतन भी चलता है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा की मुरली जी अदान है और सभी का बहुत उससे प्यार है। एक एक महावाक्य सभी बहुत प्यार से सुनते, धारण करते, मनन चिंतन करते, अपनी स्थिति को अच्छे से अच्छा बना रहे हैं। और बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों की स्थिति इतनी अच्छी हो, जो कैसी भी प्रॉब्लम, कैसी भी परिस्थितियां कलयुग के अंत में, जब प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं और माया भी अपने तमोगुणी स्वरूप में हम सबके सामने है, किसी भी प्रकार की 10-30 वाले रावण के द्वारा परिस्थिति आ जाए, उसको हम सहज ही पार कर लें, उसके लिए चाहिए स्वस्थिति और उसका आधार स्वचिंतन। स्वचिंतन के अंदर चार बातों का चिंतन हम सब करते हैं। पहले अपने स्वस्वरूप का चिंतन, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मेरा अनादि स्वरूप क्या है, उस अनादि और आदि स्वरूप का चिंतन, जिस चिंतन से हमारी स्थिति अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाए। स्वधर्म का चिंतन, स्वस्वरूप के बाद स्वधर्म की स्मृति, आत्मा का स्वधर्म, शांति, प्रेम, पवित्रता, उसके निज निजी संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाएं। फिर स्वदेश का चिंतन, जिस देश से हम आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आई हैं, बार बार उस देश में आना जाना ये लिफ्ट का काम है। ऐसे आत्मा मूल वतन की यात्रा नहीं कर सकती। जब ये बुद्धि की लिफ्ट इतनी शक्तिशाली हो, जो एक सेकंड में इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और अव्यक्त वतन से मूल वतन में पहुंच जाए, उस स्वदेश में किस रूप में हम सब उल्टे झाड़ में बाबा के साथ रहते हैं, उसका चिंतन, और स्वपिता के साथ उसका चिंतन। बाबा हमारा जो है, जैसा है, उसको यथार्थ उसी स्वरूप में पहचानना और उसके साथ संबंध स्थापित करके सर्वशक्तियों का अनुभव करना, ये स्वचिंतन के अंदर चारों बातों का चिंतन आता है। स्वचिंतन माना अपने आप का ही नहीं, लेकिन सब चारों बातें जब चिंतन में आती हैं और बार बार स्मृति आती है, मैं कौन, मैं कौन का चिंतन, जिसमें सभी प्रकार के स्वमान, जो बाबा ने हम सबको अनेक स्वमान दिलाए हैं स्मृति में, उनका भी चिंतन स्वचिंतन कहलाता है। और स्वचिंतन करने वाली आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं, क्योंकि स्वचिंतन से व्यर्थ से स्वतः मुक्त हो जाती हैं। हम सबके आगे सबसे बड़ा पेपर है व्यर्थ संकल्पों का। हरेक की यही कंप्लेन बाबा के आगे रहती है, संकल्पों की गति बहुत फास्ट है, संकल्प बहुत चल जाते हैं। कोई भी परीक्षा आती है, शरीर के रूप में अगर कोई परीक्षा आ जाए बीमारी के रूप में, तो कितने संकल्प हमारे उसको ठीक करने के लिए चलते हैं, क्या करें, कैसे करें, ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई, शरीर का ही चिंतन चलता रहता है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात आत्मिक चिंतन में रहने से रचना का चिंतन समाप्त हो जाता है। देहभान की रचना, उस चिंतन से आत्मा परे चली जाती है, इस पर चिंतन से मुक्त हो जाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको स्वचिंतन करने की कला सिखाई है। वो कला है अमृत वेले आंख खुलते ही अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाएं। एक श्रेष्ठ चिंतन है अपने स्वस्वरूप को देखें, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं, अपने स्वपिता से रूबरिहान करें। हमारा दिन इस श्रेष्ठता के साथ यदि प्रारंभ होता है तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं, और अन्य आने वाले विचार, क्योंकि सभी ब्राह्मणों को यह अनुभव है, साधारण विचारों में बहुत समय जाता, व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचार बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन एक शुभ विचार चलते रहे, स्व के बारे में ही चिंतन चलता रहे कि आत्मा को जो है, जैसी है, जिस स्वरूप में ऊपर से आई है, कैसे उस स्वरूप को प्राप्त करे, क्योंकि बाबा हम सबको वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा हम ऊपर से आए थे। आत्मा जितनी पावन आई थी, अब फिर से उस स्टेज को प्राप्त करके अपनी संपन्न और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करे, हम सब की रेस यही है, यही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और लास्ट आने वाली आत्माओं को भी बाबा फास्ट जाने की विधि यही सिखाते कि बच्चे दूसरे सब चिंतन समाप्त करो। कोई क्या भी कर रहा है, कुछ कैसा भी हो रहा है, अगर पुरुषार्थ की स्पीड को तीव्र करना है, अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करना है, तो साइट सीन्स को नहीं देखना। जैसे रेस के घोड़े को दौड़ाते हैं, मंजिल तक ले जाना चाहते हैं, फास्ट स्पीड में ले जाना चाहते हैं, तो उसके दोनों तरफ पट्टी लगा देते हैं, वो सामने ही देखे, वो इधर उधर न देखे। हम सबको भी इस पुरुषार्थी जीवन में बाबा ने विशेष डायरेक्शन दिया है कि अगर तुम्हें अपनी प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो साइट सीन्स को नहीं देखना, क्योंकि हर आत्मा पुरुषार्थी है और हर एक अपनी कमियों को निकालने का ही पुरुषार्थ कर रही है। यदि हम उन कमियों पर ध्यान देंगे तो कमी, वो कमजोरी जो दूसरे की है, वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। एक बार बाबा ने स्वउन्नति का एक बहुत महीन स्पष्ट किया था, जो स्वचिंतन करने वाली आत्माएं हैं वो अंतर्मुखी बन करके अपने आप को देखती हैं कि मेरे अंदर अभी भी कौन कौन से दाग हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, और उनको निकालने के लिए मुझे क्या प्रयास करने हैं, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या संकल्प लेना, वो खुद से बातें करते हैं। तो वो खुद को देखता है, खुद ही खुद से बातें करता है, जिसको बहुत अच्छा शब्द हमारी दीदी जी देती थी। जब भी हम लोग दीदी से मिलते थे, दीदी मनमोहिनी के लिए हम कह रहे हैं, तो दीदी हमेशा कहती थी सबसे बड़ा टीचर वो है जो स्वयं को टीच करता है, स्वयं को पढ़ाता है, और स्वयं को पढ़ाना ही स्वचिंतन है। दूसरों को हमारी कमियों के विषय में इतना मालूम नहीं रहता, ऊपर से दिखाई देता है कि ये बड़ा अच्छा ज्ञानी है, बड़ा अच्छा योगी है, बहुत अच्छा सेवाधारी है, लेकिन मेरी निजी अंदर की आंतरिक स्थिति क्या है, हर एक वो खुद को भी जानता है और उसको बाबा भी जानता है। इसलिए एकांत में बैठकर स्वचिंतन करने वाली आत्मा अपने आप को बहुत गहराई से देखती है, जैसे सागर के तले में जाने से रत्नों की प्राप्ति होती, ऐसे ही जब आत्मा अंतर्मुक्ता के गुफा में बैठ जाती, सागर के अंदर चली जाती, एकांतवास में चली जाती, तो उसको अपने आप का पता चलता है मैं कहां पर हूं। ये स्वचिंतन की एक अच्छी विधि है कि मैं स्वयं को देखूं और देख करके मेरे अंदर अभी तक क्या है, मैंने बाबा की पढ़ाई अनुसार कितनी मंजिलें क्रॉस की हैं, क्योंकि हम सभी अभी अंतिम स्थिति तक पहुंचने वाले हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अचानक समय आ जाएगा, और अचानक अंतिम समय तक जिसने जितना पुरुषार्थ किया है, जिस प्रकार का पुरुषार्थ किया है, हरेक को अपने आप का दर्शन होगा, अपने आप का साक्षात्कार होगा कि आपने क्या क्या किया है। कई बार बाबा हम सबको ये भी कहते कि जो आत्माएं अलबेली रही हैं, सेवाएं की हैं, मान शान नाम कमाया है, सबके नजरों में रही हैं, लेकिन अगर अंदर अंदर किसी भी विकारों के वशीभूत होकर किसी भी प्रकार का विकर्म कर रही हैं, तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको बाबा समय के पहले, अंतिम घड़ियों के पहले कह रहे हैं, स्वचिंतन करो, स्व को देखो, जिस तरह से बाबा हम सबको बनाना चाहता है, जिस स्वरूप में हम बच्चों को देखता है, क्योंकि बाबा की स्टेज कौन सी है, बाबा हमारे वर्तमान स्वरूप को नहीं देखता, बाबा हमारे तीनों कालों को देखकर हमसे बात करता है। आप देखेंगे इतनी बड़ी सभा के बीच में कल बाबा हम सबके बीच में आएंगे, इतने ऊंचे सामान की स्मृति दिलाते हुए हमारे भविष्य को सामने रखते हुए वर्तमान स्थितियों को नहीं देखेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में तो कई ऐसी बातें जो ब्राह्मणों के अंदर नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में मूड खराब करना, छोटी बातों में नाराज हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, मुख से कटु वचन बोल देना, अपशब्द निकाल देना, साधारण वार्तालाप कर लेना, इन सब के पीछे चिंतन है, बीज चिंतन है। बीज के दो वृक्ष बोल और कर्म के रूप में दिखाई देते हैं। जिस प्रकार का आंतरिक चिंतन जिस आत्मा का चलता रहता है, उसके उसी प्रकार के बोल और कर्म प्रत्यक्ष जीवन में दिखाई देते हैं। इसलिए बाबा ने हम सब का ध्यान खिंचवाया और हम सबको यही स्मृति दिलाते,
प्रेम से बस
ये भी बीच बीच में स्वयं को चेक करने का बहुत अच्छा समय मिलता है। 3 मिनट के अंदर भी हर एक अपने आप को देख सकता है। अभ्यास सिर्फ चाहिए अपने भ्रकुटी आसन पर बैठने का। अपने स्वरूप को देखो, अपने अंदर क्या है, कौन सी ऐसी कमियां हैं। दिल से कष्ट नहीं हो जाना, लेकिन समर्थ स्थिति में रह करके संगम युग पर ये बहुत बड़ा भाग्य हम सबको मिला है, जो स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हम सबके साथ है। उसके साथ के आधार से कोई भी ऐसे संस्कार हैं उन्हें हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे आज दादी कह रही थी, महसूसता की शक्ति चाहिए, और एकांत में जाने से ही पहले समझ आती है, फिर महसूस होता है, फिर उसको बदलने के लिए संकल्प उत्पन्न होते हैं। उसमें अगर दृढ़ता है तो तपस्या हो जाती, और तपस्या के बाद परिवर्तन आता है। इसलिए स्वयं को बदलने का सबसे अच्छा तरीका, कई बार हम उल्टी चाबी घुमा लेते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे सर्व खजानों की चाबी तुम बच्चों को मैंने दी है। बाबा शब्द सब खजानों की चाबी है। बाबा कहो सब प्राप्तियां हो जाएंगी, लेकिन बच्चे कई बार चाबी उल्टी घुमा देते हैं। स्व को देखने की बजाय साथियों को देखना शुरू कर देते हैं, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन, खुद को बदलने के बजाय ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊं। तो ऐसे उल्टी चाबी कभी कभी हम सबको हैरान कर देती है, परेशान कर देती है। तो बाबा हम सबको स्वचिंतन के लिए विशेष स्वमान देते हैं, कोई न कोई स्वमान लेकर के, क्योंकि सारा दिन कैसे चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन चले, स्वचिंतन ही चले, कोई भी बातें आए और उनको हम डोंट केयर कर सकें, उसके लिए भिन्न भिन्न स्वमान समय प्रति समय याद आते रहें। एक ही स्वमान नहीं, लेकिन स्वमान की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी माला है। मैं आपको 5 स्वमान स्मृति में दिलाता हूं। अगर आप अमृत वेले से रात्रि तक बीच बीच में वो स्वमान स्मृति में लाएं, तो श्रेष्ठ चिंतन स्वचिंतन स्वतः चलता रहेगा। पहला स्वमान जो रोज बाबा मुरली में हम सबको दिला रहे हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। स्वराज्य अधिकारी माना ही एक एक कर्म इंद्रिय पर मेरा शासन है। अपनी दरबार लगा लें और अपने कर्मचारियों से, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों से बातें करें। दरबार लगा करके मन वजीर से भी बात कर लें, बुद्धि से भी पूछ लें, तुम किधर जाती है, कहां भटकती है, क्या चाहिए, और कैसे कितनी संस्कारों में दिव्यता आई है उस पर भी नजर घुमा लें। तो ये दरबार लगाने के साथ साथ चिंतन श्रेष्ठ हो जाएगा, स्वचिंतक स्वतः बन जाएंगे। और दूसरा स्वमान है, बाबा हम सबको बहुत ऊंची स्थिति में स्थित देखता है, ये मेरे बच्चे पूर्वज और पूज्य हैं, इतनी बड़ी वंशावली के पूर्वज हैं, केवल एक घराना नहीं है, देवी देवता घराने की सारी दुनिया शाखाएं हैं, और उन शाखाओं के पूर्वज ये ब्राह्मण आत्माएं हैं। एक बहुत ऊंचे नशे में रह करके अपनी वंशावली की पालना का ध्यान रखते हुए अपने ऊपर फुल अटेंशन, पूर्वज जो बड़े घर के होते हैं वो सदैव ध्यान रखते हैं कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख पूरे परिवार के सदस्य सीख लेंगे। बाबा हम सबको यहां तक कहते, कर्म की बात तो ऊपर की है, मोटी है, लेकिन जिस प्रकार की हमारी वृत्तियां हैं, जिस प्रकार के हमारे संकल्प हैं, जिस प्रकार का हमारा चिंतन है, उसी प्रकार का वायुमंडल क्रिएट होता है। इसलिए अपने चिंतन पर भी ध्यान कि कोई भी व्यर्थ चिंतन में मेरा अमूल्य समय न चला जाए। चेक करेंगे तो पता चलेगा कितना समय साधारण और व्यर्थ संकल्पों के चिंतन में जाता है। उस पर ब्रेक लगाने का अभ्यास करें। चले आएंगे क्योंकि माया के साम्राज्य में हम सभी हैं, तो कुछ न कुछ विघ्न, कुछ न कुछ बाधाएं, कोई न कोई पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, लेकिन चेक करें और चेंज करें। तो पूर्वजपन की एक स्मृति, एक सम्मान, बहुत बड़ी जवाबदारी का आभास कराता है। और साथ साथ पूज्य हूं इतनी सारी आत्माओं की कामनाएं पूर्ण करने वाली, इसलिए मेरी कोई भी हद की कामनाएं नहीं चाहिए। हम बाबा के आगे कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं रख सकते कि बाबा मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। कई ऐसे लेकर के बाबा के सामने आते हैं, ऐसी कामनाएं लेकर के, ऐसे संकल्प लेकर के, तो बाबा कहता ये भी अभी तक भगत है, बच्चा नहीं है। भक्त आत्माएं मांगती हैं और बच्चे अधिकारी होते हैं। तो कल जब बाबा आएंगे तो पूज्य स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं हम सबको। अपने उस पूज्य स्वरूप में रहना, बाबा परम पूज्य के, हम सब बच्चे पूज्य संपन्न आत्माएं हैं, दूसरी आत्माओं की भी सर्व कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए कोई भी हद की कामना लेकर के बाबा के सामने, दादियों के सामने, बड़ों के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों की हर कामना पूरी की है, हर इच्छा पूरी कर दी है। याद करें, संकल्प देखें कि बाबा की कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको संगम युग पर किसी भी चीज की अप्राप्ति हो। सब कुछ बाबा ने प्राप्त कराया है। अपनी प्राप्तियों की स्मृति को बार बार रिवाइज करें, चिंतन में लाएं, जन्म से लेकर के अभी तक बाबा ने कितनी प्राप्तियां, कितने रत्न दिए हैं, कितनी शक्तियां दी हैं, कितने गुणों से सजाया है, तो हम स्मृति में लाते ही बाबा के प्यार में खो जाते हैं, मन का भटकना बंद हो जाता है। तो पूर्वज हूं, पूज्य हूं, एक बहुत बड़ा सम्मान है, साथ साथ मास्टर रचयिता का सम्मान है। रचना को देखते हुए एक रहम दिल का संस्कार इमर्ज होता है। कितनी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, भटक रही हैं, और बाबा ने हम सबको कल से लेकर के सब कह रहे हैं एक छोटे कुंभ में हम आ गए हैं, कुंभ मेला। लेकिन वो कुंभ मेला क्या है, आप सबने समाचार सुने होंगे, कितने लाखों करोड़ों आत्माएं पानी के अंदर डुबकी लगाने के लिए आती हैं, पावन बन जाए, कितनी श्रद्धा से, न खाने बैठने की जगह, खड़े होने की भी जगह नहीं है। आप सबको तो फिर भी इतने अच्छे स्थान पर बाबा ने बिठाया है, भले टेंट मिले हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, क्लास का इतना अच्छा स्थान मिला हुआ है, साफ स्वच्छ, वहां तो धूल में बैठते धूल ही खाते, कैसे रहते हैं आप अगर देख लें दृश्य, तो रहम आता है। भक्तों पर। बाबा कहता है बच्चे रहम दिल बनो, अपनी इच्छाओं का त्याग करो। सब कुछ बाबा ने हमको दिया है और रहम दिल मास्टर दाता बन करके मुझे इन सब को देना है। तो दाता स्वरूप की स्मृति, रहम दिल स्वरूप की स्मृति, जैसे बाबा अपने बच्चों को दे रहा है, बच्चों से भी यही अपेक्षाएं रखता है कि मेरे बच्चे अगर इच्छाएं लेंगे तो स्वचिंतक नहीं बन सकेंगे, शुभ चिंतक नहीं बन सकेंगे। इसलिए सबको देते चलो। जो कुछ प्राप्तियां हुई हैं, जितनी संगम पर हम सबको प्राप्तियां हैं, दृष्टि से, बोल से, अपने वाइब्रेशन से, हम सबको देते चले। मास्टर दातापन का स्वरूप, मंगता नहीं है, लेवता नहीं, हम सब संगम युगी देवता हैं। भविष्य में तो बनेंगे, लेकिन संगम युग पर भी बाबा ने अपने बच्चों को देवता बनाया है। देते चलो, मांगो मत। कई आत्माएं अभी तक भी सम्मान चाहती हैं, कोई पूछे, कोई बात करे, कोई हमें रिस्पेक्ट दे, मैंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना अच्छा सेंटर बना के दिया है, मैं इतनी मदद करता हूं, और मेरा तो यहाँ कोई भी स्थान ही नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, मेरी बहन जी भी मेरा ध्यान नहीं रखती। इस प्रकार के संकल्प भी कई आत्माओं के बाबा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि बाबा ने हम सबको मंगता नहीं बनाया है, देते चलो, दाता बनाया है। और सबसे बड़ा दान है सम्मान का दान करना। सबको सम्मान दो, देंगे तो अपने आप मिल जाएगा। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, लेकिन देने से स्वतः मिल जाता है। तो मैं मास्टर दाता, सम्मान दाता आत्मा हूं, उदाहरण स्वरूप हूं। एक एक बाबा का बच्चा उदाहरण मूरत, उद्धार मूरत बन जाए, एक बहुत ऊंचे सम्मान है ये। मैं समझता हूं शायद नए भाई बहने सोच रहे होंगे, ये सम्मान तो कभी हमने सोचे ही नहीं थे। बाबा के टाइटल से ही बच्चों के सम्मान है। जितने बाबा ने बाबा के टाइटल हम सब वर्णन करते, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे उन सब के मास्टर हो। तो एक एक सम्मान बीच बीच में स्मृति में लाएं, कभी पूर्वजपन का, कभी पूज्यपन का, कभी रहम दिल का, कभी दाता स्वरूप का। तो सब प्रकार की बातें आएंगी, कारोबार में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, बिजनेस में जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन स्वचिंतन उन्हीं आत्माओं का चलता रहेगा जो बीच बीच में कोई न कोई सामान लेकर के उसके चिंतन में रहेंगे, उस मस्ती में रहेंगे। बाबा ने हम सबको व्यर्थ से बचने की ये सब युक्तियां बताई हैं। और जो स्वचिंतन में रहने वाली आत्माएं हैं, उनकी मैं आपको कुछ एक निशानियां बहुत सार्थ रूप में, संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं, क्योंकि जो स्वचिंतन करते हैं, दूसरा क्या करता है, क्यों करता है, ऐसा कैसे हो रहा है, इन सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त स्थिति में रहता है। अगर ब्राह्मण आत्माएं प्रसन्न चित्त स्थिति में नहीं रहती, किसी भी दृश्य को देख करके प्रश्नात्मक बुद्धि बनकर प्रश्न करती हैं, एक जानने के हिसाब से कोई बात पूछना वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन लेकर के, प्रश्न लेकर के, क्यों, क्या, कैसे करना, ये व्यर्थ चिंतन है। चिंतन करने वाली आत्माएं हर बात में फुल स्टॉप लगाना जानती हैं, क्योंकि ड्रामा की हर सीन अच्छे से अच्छी है, इसलिए नथिंग न्यू। और जब ये बात पक्की हो जाती है कि ड्रामा में हर सीन में कल्याण है, दिखाई भले अकल्याण दे रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कल्याण छिपा हुआ है, तो सहज सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसे लगता है कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, बीत गई। फिर उसका चिंतन नहीं चलता, सोच सोच करके नींद नहीं फिट जाती। कई आत्माएं अगर कोई घटना घट गई, कुछ नुकसान हो गया, कोई कुछ ने कह दिया, बोल दिया, इतनी डिस्टर्ब हो जाती हैं जो उसी चिंतन में रातें बीत जाती हैं, नींद भी नहीं आती। और बाबा ने अपने बच्चों को सेकंड में फुल स्टॉप लगाना सिखाया है, बच्चे नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी इसमें भी तुमको कुछ सिखाने के लिए ये बात आई है, सीख करके आगे बढ़ जाओ, उसे फुल स्टॉप लगा दो। परीक्षाएं गुड साइन है, एक स्मृति रहे, कोई भी परीक्षा ही है वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती है। ये बाबा की गहरी राजयुक्त बातें चिंतन में लाओ, यही तो चिंतन है। ऐसी ऐसी बातें जो बाबा ने सुनाई है कि ड्रामा के हर राज को समझने वाला कभी भी नाराज नहीं होता। राज को जान जाओ, ये ड्रामा में राज है, कुछ कल्याण समाया हुआ है, इसलिए नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। चिंतन को फुल स्टॉप लगा देना और अच्छे चिंतन में अपने आप को मोड़ लेना। आए हैं बातें, आई हुई, कुछ समय भले संकल्प आए, लेकिन संकल्प को स्टॉप किया और फिर से अच्छे चिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में, जो बाबा ने हम सबको इतने ऊंचे ऊंचे खजाने सामान दिए, उस चिंतन से अपने विचारों की गति को परिवर्तन करना। कहा जाता है चिंतन की धारा को बदल दो तो जीवन बदल जाएगा। सिर्फ चिंतन की धारा को बदलने की आवश्यकता है। किस प्रकार के चिंतन की धारा के साथ हम बह रहे हैं, कई आत्माएं उसके पीछे पीछे बह जाती हैं। बहुत जोर से कभी धारा आती है तो बहा करके ले जाती है। हम सब उस धारा की विपरीत दशा में चल रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डरो मत, घबराओ मत, धारा भले कैसे भी तीव्र गति की हो, लेकिन हमारा स्वचिंतन, श्रेष्ठ चिंतन हमें अपनी ऊंची मंजिल में पहुंचा देगा। तो कभी भी देखो कि स्वचिंतन अगर मैं कर रहा हूं तो सदा खुशनुमा, सदा प्रसन्न चित्त स्थिति में स्थित रहता हूं। हमारे संकल्पों की गति धैर्यवत है या संकल्पों के अंदर बहुत तूफान आते हैं, उत्तेजनाएं आती हैं, बहुत प्रकार के संकल्प चल जाते हैं, ब्रेक लगती है या चलते ही रहते हैं, कई बार कितना समय, कितने घंटे, कितने दिन भी बीत जाते और शांत नहीं होते। जब तक कहीं पर उसका समाधान न मिल जाए, जब तक किसी के आगे, बाबा कई बार कहता है ना, जब कभी कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती तो उल्टी का ख्याल आता रहता है, और जब तक वो उल्टी न कर ले तब तक जी मचलाता रहता है, अंदर अंदर वो बातें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, जब तक वो किसी को सुना न दे तब तक हल्का नहीं होगा। लेकिन बाबा ये भी सिखाता है कि उल्टी भी स्थान पर की जाती है, सब जगह करोगे तो कीटाणु फैल जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी, लोग रोगी बन जाएंगे, इसलिए उसको भी स्थान पर किया जाता है। और बाबा ने स्थान बड़े अच्छे अच्छे हम सबको दिए हैं। अगर कोई ऐसे संकल्प बार बार आते हो तो बाबा के कमरे में बैठकर अंदर अंदर लिख डालो, और लिख करके बाबा के बॉक्स में डाल दो, आग के अंदर सुहा कर दो। बाबा को सुनाया, बाबा को बताया, हल्का कर दिया बाबा ने, लाइट हो गए। तो ऐसे चिंतन वाली आत्माएं जो आई बात उसको स्टॉप करने के लिए बाबा के सामने बैठ करके हल्के हो गए, लाइट हो गए और फिर से उसी चिंतन में लग गए। तो बहुत धैर्यता के संकल्प, बहुत शांति के, शीतलता के संकल्प, ये निशानी है स्वचिंतन करने वाले की। बहुत फास्ट नहीं, बहुत उत्तेजना वाले नहीं, बोल में आ जाए, कर्म में आ जाए, हाव भाव में आ जाए, कहीं बोलते नहीं है लेकिन चेहरा लाल पीला कर लेते हैं, चेहरे पर दिखाई देने लगता है वो रूहानियत, तो दिव्यता अनुभव नहीं होती। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं आपके चेहरे से सुन कहने वाले का चेहरा कैसा होगा, सदा खिला हुआ, सदा मुस्कुराता हुआ, सदा लाइट। अभी आपने देखा होगा दादी का चेहरा कितना लाइट, एकदम हल्की, जैसे कोई भी बोझ नहीं। और चिंतन अगर जरा भी साधारण और व्यर्थ हो तो चेहरे पर ही दिखाई देता है, पता नहीं क्या सोच रहा है। कई बार पूछ देते हैं, एक बार मैं किसी चिंतन में खोया हुआ था, आपको हंसी की बात सुनाता हूँ। तो एक बार मैं एक पांडव भवन में, छोटा सा स्थान था, मैं ऐसे ही बाहर एक थल्ले पर बैठा था, कुछ विचार चल रहे होंगे, मेरा इतना ध्यान नहीं अभी। तो सामने से हमारे भ्राता जगदीश जी चक्कर लगा रहे थे और वो अचानक मेरे से पूछ बैठे, भाई क्या सोच रहे हो, क्या चिंतन चल रहा है? तो मैं ऐसे घबरा गया, देखने लगा, शुरू शुरू में आया था, तो भाई साहब कुछ नहीं है। तो उन्होंने इस पर एक क्लास कराया, कुछ नहीं पर क्लास कराया कि आत्मा किसी भी समय, ऐसा भी कोई समय आता है जो कुछ न सोचती हो। बोला संकल्प तो सारा कल्प चलते हैं, कोई भी समय वो शांत नहीं होते, और तुम कितनी गहरे सोच में थे तुमको खुद पता नहीं। ऐसे ही हम लोग कभी कभी ऐसे सोच में खो जाते हैं जो पता ही नहीं चलता ये व्यर्थ चल रहा है या अच्छा चल रहा है या साधारण चल रहा है। उस संकल्प पर हमारा ध्यान हो, क्यों चलेगा तो जरूर, अगर गलत चल रहा है, साधारण चल रहा है, कोई काम का नहीं है, व्यर्थ ही चल रहा है, तो उसको ब्रेक दो, उसको चेंज को मोड़ दो, अच्छे संकल्प में, अच्छे विचारों में, कोई खुशी के। बाबा कई बार कहता है जब कभी भी आपको अच्छे अनुभव हो, मधुबन के अच्छे अनुभव, कभी आप बाबा के कमरे में गए हैं वो अच्छे अनुभव, कभी किसी के आगे क्लास कराया, किसी को ज्ञान सुनाया, वो अच्छे अनुभव, कई बार अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, ऐसे अनुभवों का चिंतन भी स्वचिंतन है, उनका भी चिंतन करो। जिस चिंतन से कोई भी ऐसे चिंतन कभी आ जाए जो मेरे काम के नहीं है, उनको चेंज किया जा सके। इसलिए पास्ट का चिंतन खराब वो है जो मेरे काम का नहीं है। आज पास्ट की कितनी सारी बातें, आप दादी जानकी के साथ बैठो, उनकी क्लासेस सुनो, बाबा दादी को सारी कहानी शुरू से लेकर के कब क्या हुआ है घटनाओं के रूप में याद रहती है, सुनाने लगती हैं। पंजाब की कहानियां कितनी है, पूना की कहानियां कितनी है, सब कहानियां दादी को याद रहती है, सुनाती रहती हैं। तो ऐसी कहानियां जिनके अंदर हमारा भला है, हमारा कल्याण है, दूसरी आत्माओं को प्रेरणाएं मिलती हैं, वो पास्ट की बातें भी याद करके अपने प्रेजेंट को ठीक कर लेना, ये भी स्वचिंतन है। तो हम सभी स्वचिंतक बन करके शुभ चिंतन करें, गुणग्राही दृष्टि बनाएं। बाबा का एक बड़ा अच्छा शब्द आ रहा है मुरलियों में, दो दिन पहले आप सबको याद हो, एक स्लोगन था, बच्चे विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। जिस प्रकार का चश्मा होता है उसी प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगते, जैसे कोई को सूखी घास के अंदर ले जाओ लेकिन चश्मा उसके ऊपर हरा पहना हुआ हो तो सूखी घास भी हरी दिखाई देने लगती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं नजर ही ऐसी हो कि हर एक की विशेषताओं पर ही ध्यान जाए, कमियां तो सबकी हैं और कमियों को देखेंगे तो हमारे अंदर वो कमियों की खान बन जाएगी। इसलिए विशेषताओं को देखते देखते, विशेषताओं को ग्रहण करते हम विशेष आत्माएं बन सकते हैं। तो बाबा कहते विशेषताओं का चश्मा पहन करके रखो और अपनी नेचर को बहुत सरल बना लो। बहुत सरल, जैसा चाहो वैसे अपने आप को मोल्ड कर सको, जब चाहो मोल्ड कर सको। परिस्थितियां मोल्ड होने वाली नहीं है। मान लो आपके सामने कोई बहुत ऊंची पहाड़ी आ जाए, तो क्या करेंगे? पहाड़ी को तोड़ने लगेंगे, पहाड़ी को हटाने के प्रयास करेंगे, या समझेंगे साइड से निकल जाओ भाई, पहाड़ी तोड़ने में समय क्यों लगाएं? कोई जंप लगा सकता है तो जंप लगा देगा, लेकिन उसमें भी थकावट होगी, साइड से निकल गए, क्रॉस कर गए। तो परिस्थितियां तो पहाड़ जैसी कलयुग के अंत में आने वाली हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इनको क्या क्यों के हथौड़े से तोड़ो मत, थक जाओगे, हटेंगी नहीं। लेकिन आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर रह करके या तो उड़ती कला से उड़ जाओ, परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी, या साइड से किनारा करके निकल जाओ। ये व्यक्ति चेंज हो जाए, ये परिस्थिति चेंज हो जाए, यहां से स्थान चेंज कर लूं, ये साथी चेंज हो जाए, तो मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी। बाबा कहता कहीं पर भी जाओगे वैसी ही परिस्थिति फिर से क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हिसाब किताब चुक तो करने ही है। जहां रहें, जिस स्थिति में रहें, जिस स्थान पर रहें, जिसके भी साथ रहें, बाबा कहते हैं तुम स्वचिंतन करना सीखो, अच्छे अच्छे विचार करो, अच्छे नशे में रहो, ये आपके लिए लिफ्ट बन जाएगी, और आप उस लिफ्ट से हर परीक्षा को, हर परिस्थिति को पार कर लेंगे। आपकी बहुत अच्छी स्थिति अच्छा वातावरण बना देगी, और अच्छी स्थिति असमर्थ आत्माओं को समर्थ बना देगी। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। ये स्वार्थ नहीं है कि हम केवल स्वचिंतन करते रहें, क्योंकि कई लोग इस पर भी हम सबसे कहते हैं स्वचिंतन ही करते रहें, दूसरे का चिंतन ही नहीं। लेकिन दूसरे का चिंतन माना, जब हम अपने आप का चिंतन करके अपने आप को बदलते हैं, तो हमारे शुभ चिंतन के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को परिवर्तन होने में मदद करते हैं। इसलिए भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो अशुभ सोचना बंद, सदा शुभ सोच करके, शुभ चिंतन में रह करके शुभ वायुमंडल बनाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा हम सबको समय अनुसार स्वचिंतक स्थिति में रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे सदा स्वचिंतन करो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी मस्ती में रहो, दूसरा अगर घोट के पिलाएगा तो भी नहीं चढ़ेगा। इसलिए अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लेकर के उस पर चिंतन करें, मनन करें, उसका सुमिरन करें, उसका वर्णन करें, तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी और परिस्थितियों पर सहज विजय हो जाएगी। ओम शांति।